ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्यारे शैवम.आर की श्रोताओं, अगला कार्यक्रम बच्चों की कहानी का समय है। इसमें आप तिरुविळयाडल पुराण की 12वां भाग को सुनने वाले हैं। इस कार्यक्रम को पेश करते हैं श्रीमती शांता सुंदरराजन जी। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।
एपिसोड 12। पिछली कड़ी में यह स्थापित किया गया था कि शिव जी भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन भक्त जब अभिमान में अपना सूझबूझ खो जाते हैं तब उनका गर्व भंग करना भी भगवान का कर्तव्य बन जाता है। अभिमान और दम्ब रहित होना भी भक्तों के लिए भगवान का एक प्रकार का आशीर्वाद ही तो है। इस तथ्य को समझाने वाली शिव जी की एक लीला सुनाएंगे।
द्वारकावन नामक क्षेत्र पुराणों में उल्लिखित है। वह ऋषियों के यज्ञों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर अनवरत मुनियों का तप और यज्ञ होता ही रहता था। ऋषि पत्नियाँ भी अपनी पतिव्रता निभाने में अति तीव्रता दिखाती थी। वे सभी शिव भक्त भी थी, लेकिन उनका मन अभिमान से मेला हो गया। इस समय दोनों वर्ग बहुत ही घमंडी हो गए। शिवजी ने उनका अहंकार तोड़ना चाहा।
एक बार ऋषियों ने एक लंबे सत्र के यज्ञ का आयोजन किया और उसी में मग्न हो गए। ऋषि पत्नियां अकेले में रहने लगी। शिवजी एक महापुरुष के वेश में आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। देखने में वह बहुत सुंदर और गंभीर दिखते थे।
ऋषि पत्नियां उनको देखते ही मोहित हो गयी और सबके मन में उनसे विवाह करने की इच्छा हुई। वे यह भी भूल गई कि वे विवाहित थी, अपना संयम खो बैठी। जब उन्होंने उस महापुरुष से विवाह की बात छेड़ी तब महापुरुष ने उन स्त्रियों पर चिढ़ गए और याद दिलाया कि उनके अपने पति हैं।
पत्नियां होश में आई और वे बहुत शर्मिंदा हुई, अब डर से कांपने लगी। ऋषियों ने अपनी दीर्घ दृष्टि में उनके हाल देख लिया और शीघ्र वहाँ आ पहुँचे। पहले तो वे महापुरुष से क्रोधित हुए और शाप भी देने वाले थे। खून की आनी से तरह तरह के जानवरों और शस्त्रों को प्रकट करवा कर उन्हें महापुरुष पर छोड़ा, परंतु महापुरुष पर इनका कोई असर नहीं हुआ।
तभी वे अपने तपोबल से महापुरुष को शिवजी के रूप में पहचान पाए, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। उनकी पत्नियां ने भी शिवजी से क्षमा याचिका की। शिवजी अपने स्वरूप दिखाकर बोले, आपकी पतिव्रता का भंग हो गया, अतः आपको शिला बनकर दक्षिण भारत के मदुरई नगर में 1000 साल पड़े रहना पड़ेगा। और ऋषियों से कहा, आपके गर्व और क्रोध के कारण आपकी सिद्धियां नष्ट हो चुकी हैं। अभी आपको एक बार फिर तपस्या और यज्ञ करना होगा।
स्त्रियों ने शाप से बचने का मार्ग पूछा। शिवजी ने कहा, आपने अपना संयम खो दिया, फिर भी आपने तो मुझे अर्थात परमेश्वर को चाहा। आपने मुझसे चूड़ियां पहनना चाहा, इसलिए आपके अगले जन्म में मैं चूड़ी व्यापारी के रूप में आपको चूड़ियां पहनाकर मोक्ष दिलाऊंगा। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए।
अब मदुरई में शिवजी की लीला आरंभ हुई। मदुरई नगर में शिला रूप में पड़ी रही स्त्रियां व्यापारियों की पुत्रियां बनी। बाद में वे उसी कुल के व्यापारियों की पत्नियां बनी। उचित समय पर सुन सुंदर चूड़ियों के विक्रेता बनकर गलियों में घूमने लगे। व्यापारियों की पत्नियां पूर्व जन्म की वासना से उस चूड़ियां बेचने वाले को बुलाया।
न जाने क्यों उस विक्रेता के मुखमंडल से जो कांति निकल रही थी, वह मंदिर में स्थित सोम सुंदर भगवान की कांति जैसे ही थी। वे उस व्यापारी से चूड़ियां खरीदने लगी। हमारी परंपरा में चूड़ी वाली पर पुरुष होने के बावजूद स्त्रियों के हाथ पकड़कर चूड़ियां डाल सकता है।
जैसे ही चूड़ी विक्रेता उनके हाथों में चूड़ियां डालने लगा, उन स्त्रियों को पूर्व जन्म की घटनाएं याद आई। विक्रेता को पहचान लिया और सबने साष्टांग नमस्कार किया। शिवजी ने अपना मूल स्वरूप दिखाए और अंतर ध्यान हो गए। स्त्रियों ने भगवत चिंतन में ही अपना सारा जीवन बिताकर मोक्ष प्राप्त कर लिए। बच्चों, भगवान शिव तो करुणा के ऐसे सागर हैं जिसका सिंचन एक साधारण किसान और उसकी पत्नी पर भी होती है।
किसान नल्लान के जीवन में एक ही लक्ष्य था, वह अपनी खेत के उपजाऊ में से 10 का एक भाग अपने लिए रखकर बाकी सब अतिथि सत्कार में व्यय करता था। उसकी पत्नी का भी एक ही काम था, निरंतर खाना बनाकर परोसना।
एक बार अकाल के कारण खेती में फसल कम हो गई और घर में चावल का दाना भी नहीं था, इसलिए अतिथियों को अन्न दे नहीं पाया। दोनों भूखे ही रह गए। तभी उन दोनों के आया कि अतिथि सत्कार में इतना मग्न हो गए कि भगवान जो अन्नदाता हैं उन्हें सर्वस्व भूल गए थे। दोनों ने मंदिर जाकर अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांगी।
उन दोनों ने यह शपथ लिया कि अगर अगले दिन उन्हें धान्य नहीं मिला तो वे आत्महत्या कर लेंगे। उनकी तीव्रता से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, अब तुम घर जाओ, वहाँ एक ऐसा अन्न का भंडार देखोगे जिससे धान्यों का अभाव दूर हो जाएगा। किसान बहुत खुश हुआ और शिवजी के गुण गाते हुए घर पहुँचा। बच्चों, भगवान की एक और लीला है जिसमें एक निराधार विधवा को बचाने के लिए भगवान शिवजी को दरबार में आकर साक्षी देना पड़ा। कहानी कुछ ऐसी है।
संतान न होने के कारण एक सज्जन अपनी बहन के लड़के को गोद ली अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करने लगे। वैसे तो भाई बहन दोनों स्वभाव से अच्छे ही थे, मगर दोनों में कुछ गलत फहमी हो गई, झगड़ा भी हो गई। विरक्ति में अपनी सारे संपत्ति को उस लड़के के नाम लिखकर भाई और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े।
भाई के जाने के बाद बहन को बहुत पश्चाताप हुआ और वह सोचने लगी कि उसके प्रिय बैया को जाने नहीं देना था। आखिर उन्होंने ही अपने लड़के को पाला है और इतना धन भी दिया है। उसने भगवान से क्षमा मांगी।
कुछ दिन के बाद बहन विधवा हो गई और उसे देखने वाला कोई नहीं रहा। उसको अपने भाई का बहुत याद आया। उसके रिश्तेदारों ने भी उसकी सब संपत्ति छीन ली। उस स्त्री को बहुत दुख हुआ। उसकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था और वह अपने भाई को भी नहीं ढूंढ पाई। मंदिर जाकर भगवान से गुहार सुनाया। शिवजी करुणा भरी वाणी में बोले, तुम कल दरबार जाकर राजा के सामने अपना गुहार प्रस्तुत करो।
अगले दिन उस स्त्री ने दरबार जाकर शिकायत की। रिश्तेदारों ने उसकी संपत्ति की सबूत मांगी। उसने कहा कि वह धन उसके भाई का दिया हुआ था। तो राजा ने पूछा, इसका क्या सबूत है? विधवा रोती हुई बोली कि मैं कहां से अपने भाई को लाऊं? वे तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, मैं कैसे सबूत दिखाऊं?
राजा दुविधा में पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि यह स्त्री सच ही कह रही है। एक स्त्री के आंसू उससे देखा ना गया, परंतु साक्षी उस स्त्री के पक्ष में नहीं था। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे सही मार्ग दिखाए।
इतने में शिवजी उसके भाई के रूप में आए। भाई ने कहा कि उसी ने संपत्ति अपने बहन को दी है। सबूत के तौर पर उनके घर के कुछ रहस्य को भी बोलने लगे। इससे राजा को पता चल गया कि उसी ने अपनी बहन को संपत्ति भेंट में दी है। राजा को अब न्याय देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। झूठी बात कहकर एक अबला विधवा को संकट में डालने के कारण रिश्तेदारों को दंड मिला।
जब बहन ने भाई को घर पर बुलाया तब वे अंतर ध्यान हो गए। सभा में हाहाकार मचा। लोगों को पता चल गया कि स्वयं भगवान ही साक्षी बनकर आए थे।
मित्रों, अब तक हमने बहुत लीलाएं देखी। इनमें अधिकांश क्रीड़ाओं में भगवान शिव जी अपने मूल रूप या किसी वेश धारण करके प्रकट होते आए हैं। आम जनता भी उनका दर्शन कर सकते थे।
बच्चों, इससे हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो यह है कि उस जमाने में यानी पौराणिक काल में लोग सत्व गुण से भरे हुए थे। लोग मानते थे कि सच्ची भक्ति से भगवान को पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आम जनता में अधिकांश लोग धर्म मार्ग पर ही जीवन व्यतीत करते थे। वे जानते थे कि भगवान शिव जी उनके जीवन का एक अंग है और हर कदम में उनके व्यवहारों के साक्षी बनकर रहते थे। अगली कड़ी में और कुछ कहानियाँ सुनाएंगे।